आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। आज से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को करेंगी संबोधित। महाकुंभ हादसे की न्यायिक जांच शुरू, आज प्रयागराज जाएगी 3 सदस्यीय न्यायिक टीम। बसंत पंचमी पर महाकुंभ में नहीं होगा वीआईपी मूवमेंट, मेला क्षेत्र में 4 फरवरी तक वाहनों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा नेता व उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और सपा सांसद डिंपल यादव ने प्रत्याशियों के पक्ष में किया चुनाव प्रचार। और प्रदेश में हुई 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 6 लोगों की मौत, 7 घायल। अब समाचार विस्तार से। संसद का बजट सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक के दौरान सरकार ने सत्र के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की। मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी।
साल का पहला पार्लियामेंट सेशन है तो इसका शुरुआत देश का महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण के बाद इकोनॉमिक सर्वे पेश होंगे 31 जनवरी को, फिर 1 फरवरी को 2025 का बजट पेश किया जाएगा।
संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के साथ ही बजट पर भी चर्चा होगी जो 13 फरवरी तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि संसद में पहले से ही 16 विधेयक और 19 संसदीय कार्य सूचीबद्ध हैं। महाकुंभ में 29 जनवरी को तड़के हुई दुखद घटना में 30 लोगों की मौत के मामले में 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग ने कल जांच शुरू कर दी। आयोग आज प्रयागराज के संगम घाट का दौरा करेगा। सरकार के निर्देशानुसार आयोग घटना के कारणों और परिस्थितियों की जांच करेगा तथा 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। आयोग भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपाय भी सुझाएगा। 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का नेतृत्व इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हर्ष कुमार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जांच प्रारंभ हो गई है।
पहला चरण आप लोगों के सामने प्रारंभ हो गया। कार्यस्थल निरीक्षण करेंगे, वहाँ की परिस्थितियों को, कारणों को सबको अध्ययन करेंगे और इस बात पे समीक्षा करेंगे कि ऐसी पुनरावृत्ति आगे ना हो पाए।
प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार ने कल महाकुंभ के संगम घाट का दौरा किया और घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल पहुंचकर हादसे में घायल लोगों के इलाज के बारे में जानकारी ली। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि घायलों के इलाज का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।
36 लोग घायल हैं जो यहाँ पे भर्ती हैं और अलग अलग तरह की इंजरी है। मेडिकल डिपार्टमेंट के प्रमुख सचिव साहब भी हम लोग के साथ हैं और डॉक्टर्स को यहाँ पे समझाया गया। सबका बहुत अच्छे से इलाज हो रहा है और उनके साथ जो तीमारदार हैं उनके लिए भी यहाँ पे पूरी व्यवस्था बनाई गई है। जो भी व्यवस्था है इलाज की और बाकी चीजें वो हम लोग सरकार की तरफ से इसको उठाया जाएगा।
उधर मेला प्रशासन ने बसंत पंचमी स्नान की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था को और भी बेहतर बनाया जा रहा है। प्रयागराज के डीआईजी महाकुंभ वैभव कृष्ण ने बताया कि बसंत पंचमी में भी वीआईपी मूवमेंट की अनुमति नहीं होगी।
आगामी बसंत पंचमी का मुख्य स्नान पर्व है, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और अगेन पूरे जो हमारा पिलग्रिम मूवमेंट है उसकी तैयारी कर रहे हैं। उन लोगों ने निर्देशों के क्रम में ये डिसाइड किया हुआ है कि जैसे 29 तारीख को कोई वीआईपी मूवमेंट अलाउड नहीं था, इसी प्रकार 3 तारीख को भी कोई वीआईपी मूवमेंट अलाउड नहीं होगा।
इस बीच प्रयागराज के जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार मंदर ने प्रयागराज में वाहनों के प्रवेश के प्रतिबंध संबंधी भ्रामक सूचना का खंडन किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मंदर ने कहा कि आज, कल और 4 फरवरी को कोई मार्ग परिवर्तन नहीं होगा। उन्होंने बताया कि बसंत पंचमी पर अमृत स्नान के कारण प्रयागराज में केवल 2 और 3 फरवरी को वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। प्रयागराज जिले के अपर पुलिस अधीक्षक यातायात अंशुमान मिश्रा ने कल बताया कि महाकुंभ मेला क्षेत्र में नो व्हीकल जोन की व्यवस्था 4 फरवरी तक जारी रहेगी। इस दौरान केवल आवश्यक सेवाओं वाले वाहनों को ही मेला क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है।
महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:40, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 MHz पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर।
प्रयागराज महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का क्रम जारी है। कल शाम तक करीब 1,95,00,000 श्रद्धालुओं ने पवित्र त्रिवेणी में स्नान किया। इसके साथ ही महाकुंभ में स्नान करने वालों का आंकड़ा अब 27,58,00,000 पहुंच गया है। संगम घाट पर हुए हादसे के बाद सरकार ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं। एक रिपोर्ट।
मेला क्षेत्र में व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए राज्य सरकार ने 2019 कुंभ के दौरान प्रयागराज के मंडलायुक्त रहे आशीष गोयल और इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भानु गोस्वामी को महाकुंभ में तैनात किया है। इसके अलावा मेले की व्यवस्थाओं में सहायता के लिए विशेष सचिव स्तर के 5 अधिकारियों को 12 फरवरी तक के लिए प्रयागराज भेजा गया है। महाकुंभ में बेहतर प्रबंधन और सुरक्षा के लिए पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों की भी तैनाती की जा रही है। समाचार कक्ष से मैं कुमार अरोड़।
इस बीच बड़ी संख्या में महाकुंभ से रोजाना लौट रहे श्रद्धालु अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए भी पहुंच रहे हैं। बीते 4 दिनों में लगभग 65,00,000 श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर चुके हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए श्रीराम मंदिर में दर्शन का समय बढ़ाकर लगभग 18 घंटे कर दिया गया है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कल लखनऊ में आयोजित श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि एवं भजन संध्या कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। उन्होंने मां भारती की सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अमर बलिदानियों की पावन स्मृति में दीप दान किया। श्री योगी ने राष्ट्रपिता के साथ ही सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके स्मृतियों को नमन किया। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट के लिए चुनाव प्रचार जारी है। भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में मिल्कीपुर में 2 जनसभाएं की। श्री पाठक ने कहा कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेगी। वहीं समाजवादी पार्टी की नेता और सांसद डिम्पल यादव ने भी कल मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा और रोड शो कर सपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का नतीजा देश और प्रदेश के लिए संदेश बनेगा। इस सीट के लिए 5 फरवरी को मतदान और 8 फरवरी को मतगणना होगी। प्रदेश के अलग अलग जिलों में कल हुई 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 7 लोग घायल हो गए। जौनपुर जिले के मुंगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के सतहरिया में कल तड़के एक कार और बस की टक्कर में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना में 3 अन्य लोग घायल हो गए। वहीं फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद क्षेत्र में कल सुबह हुई 2 ट्रकों के आमने सामने की भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 अन्य घायल हो गए। सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को कल बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद उन्हें उनके आवास से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। आज से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को करेंगी संबोधित। महाकुंभ हादसे की न्यायिक जांच शुरू। आज प्रयागराज जाएगी 3 सदस्यीय न्यायिक टीम। बसंत पंचमी पर महाकुंभ में नहीं होगा VIP मूवमेंट। मेला क्षेत्र में 4 फरवरी तक वाहनों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा नेता व उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और सपा सांसद डिम्पल यादव ने प्रत्याशियों के पक्ष में किया चुनाव प्रचार। और प्रदेश में हुई दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 6 लोगों की मौत, 7 घायल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।